एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जो इतना विशाल और महत्वाकांक्षी है कि उसे पूरा करने में एक इंसान को 24 साल लग गए।
24 साल?
हाँ, एक ऐसा काम जिसने दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया।
और हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ऑल्टर के मॉन्यूमेंटल काम द हिब्रू बाइबल, अ ट्रांसलेशन विद कॉमेंट्री की। और इससे पहले कि कोई सोचे कि ये धर्म या आस्था के बारे में कोई चर्चा है, रुक जाइए। असल सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि क्या होगा अगर हम बाइबल को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे एक महान साहित्यिक महाकाव्य की तरह पढ़ें?
बिल्कुल। क्या होगा अगर हम उसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे जटिल कहानियों में से एक माने, जिसमें राजनीति है, विश्वासघात है,
नायक हैं, खलनायक हैं।
हाँ, और ऐसे किरदार हैं जो आज भी हमें हैरान कर सकते हैं। रॉबर्ट ऑल्टर ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर यही करने की कोशिश की, और जो उन्होंने पाया वो सच में चौंकाने वाला था।
तो ये रॉबर्ट ऑल्टर हैं कौन?
और यही बात सबसे दिलचस्प है।
बताइए।
वो कोई पादरी, रब्बी या कोई धर्मशास्त्री नहीं थे। वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में हिब्रू और तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर थे।
मतलब उनका काम था कहानियों के ताने बाने को समझना।
हाँ, कि कविता कैसे काम करती है और लेखक शब्दों से जादू कैसे करते हैं।
एक मिनट, लेकिन यही सवाल मन में आता है, एक लिटरेचर प्रोफेसर बाइबल का अनुवाद क्यों कर रहा है? मतलब क्या सदियों से धर्मशास्त्री और विद्वान जो काम कर रहे थे वो काफी नहीं था? इसमें ऐसा क्या लगे?
यही तो असली पॉइंट है। ऑल्टर का मानना था कि पिछले अनुवादकों ने बाइबल के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की है।
नाइंसाफी किस तरह थी? उन्होंने या तो उसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ माना या फिर एक ऐतिहासिक दस्तावेज, लेकिन उन्होंने उसे एक साहित्यिक कृति, एक मास्टरपीस ऑफ आर्ट के रूप में नहीं देखा।
अच्छा।
ऑल्टर एक तरह से बाइबल के आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेकिन वो हड्डियों की नहीं बल्कि शब्दों, लय और कहानी कहने की भूली हुई तकनीकों की खुदाई कर रहे थे।
मतलब वो सिर्फ ये नहीं देख रही थी कि क्या कहा गया है, बल्कि ये भी कि उसे कैसे कहा गया है। उनके पास दो चीजों का एक दुर्लभ कॉम्बिनेशन था। एक तो प्राचीन हिब्रू भाषा का गहरा ज्ञान, और दूसरा एक वर्ल्ड क्लास साहित्यिक आलोचक की पैनी नज़र। वो पाठ के संगीत को सुनना चाहती थी, न कि सिर्फ शब्दों का अनुवाद करना।
तो ये किताब आखिर है क्या? ये तीन भारी भरकम खंडों में हिब्रू बाइबल का एक बिल्कुल नया अनुवाद है। हिब्रू बाइबल यानी वो हिस्सा जिसे ईसाई परंपरा में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं।
लेकिन ऑल्टर का जो मुख्य तर्क है वो बड़ा सीधा और पावरफुल है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी कोई पसंदीदा कविता या उपन्यास हो।
जी।
अब सोचिए अगर कोई उसका ऐसा अनुवाद करे कि उसकी सारी खूबसूरती, सारी लय, सारा इमोशन खत्म हो जाए।
और वो बस जानकारी का एक सूखा टुकड़ा बनकर रह जाए।
बिल्कुल, तो कैसा लगेगा? ऑल्टा के मुताबिक बाइबल के साथ सदियों से यही होता आया है।
हाँ, उन्होंने देखा कि जो पुराने अनुवाद हैं, जैसे किंग जेम्स वर्जन, वो भाषा में तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन अक्सर मूल हिब्रू के अर्थ से भटक जाते हैं।
और जो नए आधुनिक अनुवाद हैं,
वो सटीक होने की कोशिश में इतने सरल और सीधे हो गए हैं कि उन्होंने पाठ की साहित्यिक आत्मा को ही मार दिया है। पाठ एकदम फ्लैट हो गया है, जैसे किसी महान संगीत की धुन छीन ली गई हो।
तो ऑल्टा का मिशन था उस संगीत को वापस लाना।
वो चाहती थी कि एक अंग्रेजी पाठक भी मूल हिब्रू भाषा की गूंज,
उसके शब्द खेल, उसकी अनोखी लय
और कहानी कहने का वो दमदार अंदाज,
हाँ, उसे महसूस कर सके। उनका मानना था कि बाइबल का संदेश उसके कहने के तरीके से जुड़ा हुआ है। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते।
तो उन्होंने ये किया कैसे? चलिए इस विशाल ग्रंथ के स्ट्रक्चर को देखते हैं। उन्होंने इसे तीन मुख्य भागों में बांटा है, जैसा कि मूल हिब्रू बाइबल यानी तनाख में होता है।
और पहला भाग है तोरा, द टोरा,
यानी मूसा की पहली पांच किताबें।
और यहीं से हमें ऑल्टर की प्रतिभा की पहली झलक मिलती है। हम जेनेसिस जैसी किताबों को अक्सर साधारण कहानियों की तरह पढ़ते हैं, आदम और हव्वा, कैन और हाबिल,
याकूब और एसाव।
हाँ, लेकिन ऑल्टर दिखाती हैं कि इन कहानियों को लिखने की तकनीक कितनी ज्यादा परिष्कृत है।
हाँ, जैसे कि बाइबल के कथावाचक दिखाते हैं, बताते नहीं।
शो डोंट टेल।
ये एक ऐसी टेक्निक है जो आज के लेखक सीखते हैं।
बिल्कुल।
कथावाचक कभी नहीं बताएगा कि याकूब चिंतित था। वो हमें दिखाएगा कि याकूब क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, और हमें खुद उसके मन की स्थिति का अंदाजा लगाना होगा।
मतलब पाठक कहानी में एक एक्टिव भागीदार बन जाता है।
बिल्कुल।
किसी कुएं पर एक महिला से मिलना
जो बाद में उसकी पत्नी बनती है।
हाँ, ये पैटर्न मैंने भी नोटिस किया है।
ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये एक साहित्यिक पैटर्न है जो पाठक को संकेत देता है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भाग्य का एक इशारा है।
मुझे तो ये बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी कि ऑल्टर ने लेविटिकस जैसी किताब को भी उबाऊ नहीं रहने दिया। सच कहूं तो मेरे लिए उन कानूनों और नियमों को पढ़ना हमेशा एक स्ट्रगल रहा है।
हाँ, वो किसी लीगल डॉक्यूमेंट की तरह लगते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन ऑल्टर का नजरिया यहाँ पूरी तरह से पारंपरिक सोच को पलट देता है। वो तर्क देती हैं कि ये कानून हवा में नहीं लटक रहे, उन्हें मिस्र से आजादी और एक राष्ट्र के बनने की एक महान रोमांचक कहानी के ठीक बीच में रखा गया है।
अच्छा,
वो सिर्फ नियम नहीं है बल्कि उस यात्रा का हिस्सा है कि एक बिखरा हुआ समाज कैसे एकजुट होता है। अचानक वो नियम उबाऊ नहीं लगते। तो ये तो थी पहली 5 किताबों की बात, लेकिन कहानी असल में दिलचस्प तब होती है जब भविष्यवक्ता और राजा मंच पर आते हैं।
और यहीं से दूसरा हिस्सा नबी, द प्रॉफिट्स, शुरू होता है। इसमें ऐतिहासिक कथाएं भी हैं और भविष्यवाणियों की कविताएं भी।
और यहाँ ऑल्टर राजा दाऊद मतलब किंग डेविड की कहानी को साहित्यिक कला का शिखर मानते हैं।
अगर किसी को लगता है कि आज के टीवी शो के किरदार बहुत जटिल होते हैं तो उन्हें ऑल्टर के दाऊद से मिलना चाहिए। कथावाचक दाऊद को कभी भी सीधे तौर पर अच्छा या बुरा नहीं कहता।
नहीं, हमें बस उसके काम, उसकी बातें और उसके पापों के नतीजे दिखाए जाते हैं।
और क्या कमाल का किरदार उभर कर आता है। एक ही इंसान में एक महान कवि है, एक बहादुर योद्धा है, एक धोखेबाज व्यभिचारी है
और एक टूटा हुआ पिता है जो अपने बेटे के लिए रोता है। वो नायक भी है और खलनायक भी।
ये इतना आधुनिक चरित्र चित्रण है कि यकीन करना मुश्किल है कि यह हजारों साल पहले लिखा गया था। ये हमें सिखाता है कि नैतिकता कभी भी सीधी सरल नहीं होती।
और फिर आती हैं भविष्यवाणियों की किताबें, यशाया, यिर्मयाह।
हाँ, ऑल्टर यहाँ उनकी काव्यात्मक शक्ति पर जोर देती हैं और यहीं पर वो हिब्रू कविता की आत्मा, उसकी सबसे जरूरी तकनीक, समानांतरवाद, पैरेललिज्म को सामने लाती हैं।
ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हिब्रू कविता की चाबी है।
इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कहे उसने दरवाजा जोर से बंद किया,
उसने गुस्से में चौखट पटक दी।
बिल्कुल, बात एक ही है लेकिन दूसरी पंक्ति पहली के इमोशन को और मजबूत बना देती है। ये सिर्फ दोहराव नहीं है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के विचार को या तो आगे बढ़ाती है या उसका विरोध करती है या उसे एक नए एंगल से दिखाती है।
जैसे एक भजन में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाशमंडल उसके हाथों के काम को दिखाता है।
बिल्कुल सही उदाहरण। यहाँ दूसरी पंक्ति पहली के विचार को एक अलग शब्द आकाशमंडल और एक अलग क्रिया दिखाता है के साथ दोहराकर उसे और गहरा और भव्य बना देती है। ऑल्टर का अनुवाद इसी लय को पकड़ने की कोशिश करता है।
और अंत में हम आते हैं तीसरे और अंतिम खंड पर, लेखन, द राइटिंग्स। ये तो जैसे साहित्य खजानों का एक पिटारा है।
हाँ, इसमें कविता, ज्ञान और कहानियां सब कुछ मिला हुआ है और यहाँ ऑल्टर हमें कुछ और झटके देती हैं।
जैसे
अय्यूब की किताब यानी बुक ऑफ जॉब।
हाँ।
हम सबने सुना है कि ये धैर्य की कहानी है।
हाँ, जॉब्स पेशेंस तो एक कहावत है।
लेकिन ऑल्टर इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देती हैं। वो कहती हैं कि अय्यूब धैर्यवान बिल्कुल नहीं है, वो एक विद्रोही है।
विद्रोही?
हाँ, वो एक निर्दोष इंसान है जो पीड़ा में भगवान पर चिल्ला रहा है, उनसे जवाब मांग रहा है और ईश्वरीय न्याय को चुनौती दे रहा है। उसकी कविता गुस्से और दर्द से भरी एक शानदार चीख है।
ये तो सच में पूरी कहानी को पलट देता है।
और फिर रूथ और एस्थर जैसी छोटी किताबें हैं। ऑल्टर इन्हें उत्कृष्ट लघु कथाओं के रूप में देखती हैं।
और एस्थर की कहानी के बारे में जो बात उन्होंने उजागर की, उसने तो मेरा दिमाग ही हिला दिया।
बताइए।
यह एक राजनीतिक थ्रिलर और दरबारी व्यंग्य है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी किताब में ईश्वर शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं है।
सच में? ये तो अविश्वसनीय है। बाइबल के अंदर एक सीक्रेट सेक्युलर थ्रिलर।
हाँ, यह बाइबल के भीतर मौजूद साहित्यिक विविधता को दिखाता है जिसे हम अक्सर एक ही रंग में देख लेते हैं।
तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद कुछ बहुत बड़े और महत्वपूर्ण विचार हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं। पहला और सबसे बड़ा तो यही है कि बाइबल का धर्मशास्त्र उसकी साहित्यिक कला से अलग नहीं है, संदेश माध्यम में ही छिपा है।
आप कहानी की कला को हटा दें तो आप संदेश की आत्मा को भी खो देते हैं।
बिल्कुल। दूसरा विचार जो दिमाग हिला देता है वो है इन किरदारों की गहराई। हम सोचते हैं कि बाइबल के पात्र या तो संत होते हैं या पापी, लेकिन ऑल्टर दिखाती हैं कि राजा दाऊद असल में एक जटिल आज के किसी किरदार की तरह हैं।
यह हमें सिखाता है कि इंसान अच्छा और बुरा एक साथ हो सकता है।
हाँ, और तीसरा हिब्रू भाषा की ठोसता और ज़मीनी एहसास। ऑल्टर बताती हैं कि हिब्रू भाषा आत्मा सोल जैसे अमूर्त विचारों के लिए भी बहुत शारीरिक शब्द इस्तेमाल करती है, जैसे जीवन सांस, लाइफ ब्रेथ या गला।
ये विचारों को हवा हवाई नहीं बल्कि शरीर से जुड़ावा बनाती है।
बिल्कुल, उनका अनुवाद इस शारीरिकता को वापस लाने की कोशिश करता है। और आखिरी कमाल का आइडिया है समग्र कलात्मकता, कंपोजिट आर्टिस्ट्री का।
ये क्या है?
आज के विद्वान मानते हैं कि बाइबल कई अलग अलग लेखकों और स्रोतों को जोड़कर बनी है। अक्सर इसे कमजोरी की तरह देखा जाता है कि एक उलझी हुई पैचवर्क वाली किताब है।
लेकिन ऑल्टर कहते हैं नहीं, इसे ऐसे देखे जैसे एक मास्टर फिल्म एडिटर ने अलग अलग कैमरों से ली गई फुटेज को मिलाकर एक शानदार सिनेमाई अनुभव तैयार किया हो।
सही, उनका तर्क है कि जो अंतिम संपादक थे वे कोई साधारण लोग नहीं थे, वे साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने इन सभी धागों को एक साथ बुनकर एक एकीकृत और शक्तिशाली कलाकृति बनाई।
ऑल्टर के कमेंट्री ऐसे विचारों से भरी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनका एक मुख्य विचार तो यही है कि पुराने अनुवाद जैसे किंग जेम्स सुंदर तो हैं पर अक्सर गलत हैं, जबकि आधुनिक अनुवाद स्पष्ट होने की कोशिश में पाठ को साहित्यिक रूप से सपाट और नीरस बना देते हैं।
तो उनका लक्ष्य सटीकता और कलात्मक शक्ति के बीच एक पुल बनाना था।
बिल्कुल, और कहानी कहने की तकनीक के बारे में भी वो यही कहते हैं। बाइबल के कथावाचक बताते नहीं, दिखाते हैं।
हाँ।
हमें पात्रों के कार्यों और संवादों से उनके मन की थाह लेनी पड़ती है।
ये पाठक को कहानी में शामिल होने के लिए मजबूर करती है।
हाँ,
और कविता के बारे में उनका विचार तो क्रांतिकारी है। वो कहती हैं कि समानांतरवाद हिब्रू कविता की भार वहन करने वाली संरचना है। ये सिर्फ एक बात को दो बार कहना नहीं है
बल्कि विचार को तीव्र करना है, उसे स्पष्ट करना है और उसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है।
बिल्कुल, ये शब्दों की तुकबंदी नहीं, विचारों की तुकबंदी है।
ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है कि 3000 साल पुरानी किताब कितनी कलात्मक है, लेकिन आज की जिंदगी में इसका क्या काम?
इसका बहुत गहरा संबंध है। पहली बात, ये हमें किसी भी चीज़ को ध्यान से और गहराई से पढ़ना, क्लोज रीडिंग सिखाता है। ये स्किल हर जगह काम आती है, चाहे आप एक समाचार लेख पढ़ रहे हों, कोई कविता या कोई कानूनी दस्तावेज। शब्दों के चयन पर, उनकी लय पर ध्यान देना हमें एक बेहतर पाठक और विचारक बनाता है।
दूसरा, ये हमें जटिलता और अस्पष्टता को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिंदगी हमेशा सीधी और सरल नहीं होती, और बाइबल के पात्र भी नहीं हैं। दाऊद एक ही समय में नायक भी है और खलनायक भी। ये हमें काले और सफेद सोच से परे देखने में मदद करता है,
जो आज के ध्रुवीकृत दुनिया में एक बहुत ही जरूरी स्किल है।
बिल्कुल।
और तीसरा, ये प्रभावी संचार का एक शक्तिशाली सबक है। आप क्या कहते हैं ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप उसे कैसे कहते हैं।
शब्द, लय और शैली का गहरा प्रभाव पड़ता है।
हाँ, ऑल्टर का काम हमें दिखाता है कि भाषा केवल जानकारी देने का एक साधन नहीं है, बल्कि ये एक कला है जो अनुभव पैदा करती है।
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये था कि बाइबल की स्थायी शक्ति उसके सरल नैतिक नियमों में नहीं है, बल्कि मानवीय अनुभव की पूरी जटिलता को शानदार साहित्यिक कला के माध्यम से प्रस्तुत करने की उसकी इच्छा में निहित है।
विश्वास, संदेह, प्रेम, विश्वासघात,
पीड़ा और आशा, ये मानव होने के संघर्ष की एक ईमानदार तस्वीर पेश करती है।
और मेरे लिए यह समझना कि रूप और सामग्री को अलग नहीं किया जा सकता। ऑल्टर का काम हमें बाइबल को जानकारी के लिए नहीं बल्कि एक गहरे साहित्यिक अनुभव के लिए पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है।
ये एक तरह से पाठ को फिर से जीवंत कर देता है।
हाँ, उसे एक प्राचीन संग्रहालय की वस्तु से निकालकर एक जीवित, सांस लेती हुई कलाकृति में बदल देता है। ये ऐसा है जैसे किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को आप 4K में रंगीन देख रहे हो।
तो अंत में ये सोचने लायक सवाल ये है, अगर हम अपने सबसे पवित्र या महत्वपूर्ण ग्रंथों को केवल जानकारी के स्रोत के रूप में देखते हैं तो हम क्या खो रहे हैं? क्या हम उनकी कला, उनकी आत्मा और उनके संदेश की गहराई का एक बड़ा हिस्सा नज़रअंदाज कर रहे हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।